حينا بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے جس طرح کسی اور دنیا کی مخلوق کو ابس خلق نہیں فرمایا، اس طریقے سے اس نے بظاہر جو کچھ انتہائی مادی مخلوقات ہیں انہیں بھی ابس خلق نہیں کیا، بلکہ خاص مقاصد کی خاطر، خاص اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ان مخلوقات کو خلق فرمایا ہے. اگر انسان کے اندر الہی بصیرت جاگ رہی ہو تو اپنی الہی بصیرت سے وہ انتہائی مادی ترین مخلوقات کے اندر بھی معنوی ترین ضرور کو حاصل کر سکتا ہے. تو وہ چیز جس کو کوئی مادہ پرست دیکھے تو شاید مادیت کا کوئی عنصر اس کو تعبیر کرے، اس کو اگر کوئی الہی بصیرت کے ساتھ دیکھے گا تو خود بخود اپنے اندر نورانیت کو احساس کرے گا، معنویت کو احساس کرے گا. اور بہت سادہ سی مثال، جیسا کہ متعدد اشعار کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے، بارش کی مثال ہے کہ بارش کو اگر کوئی ایک انسان دیکھے، اور ہر چیز کے اندر دیکھنے کے انداز ہو سکتے ہیں، پھول کو دیکھنے کا ایک انداز ہو سکتا ہے، پھول کو کوئی انسان دیکھ سکتا ہے کئی طریقوں سے. ایک آرٹسٹ پھول کو دیکھتا ہے اس انداز سے کہ اس کو میں اگر تصویر کشی کروں اس کی، اس کو میں بنانے کی کوشش کروں تو کیسے بناؤں گا. اور پھول کو ممکن ہے کہ کوئی مثال کے طور پر ماہر ارضیات دیکھے کہ کس قسم کی زمین میں اس قسم کا پھول اگ سکتا ہے. ممکن ہے کہ کوئی شاعر دیکھے پھول کو اور وہ اپنی شاعری کے لیے کوئی عنوان حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور ممکن ہے کہ کوئی الہی بصیرت سے دیکھے تو وہ پھول کے اندر بھی جمال الہی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر بھی جمال دیکھ رہا ہوتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اگر کوئی الہی بصیرت رکھتا ہو تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ خدا تعالیٰ کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے. اور قرآن کریم نے اسی خاطر وہ جن کو ہم نیچرل فینومیناز کہتے ہیں، یعنی قدرتی مناظر کہتے ہیں، قدرتی ظواہر کہتے ہیں، ان تمام کو الہی بصیرت کے لیے استعمال کیا ہے. کہا کہ تم پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو. اب ظاہر ہے کہ قرآن مطالع کیا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کے اندر ان تمام چیزوں سے اللہ کی بصیرت حاصل ہوتی رہے. اور آپ تصور کیجئے کہ مسلمانوں نے جو سائنسی ترقی انجام دی تھی ابتدائی قرون کے اندر، ابتدائی صدیوں میں مسلمانوں کی سائنسی ترقی بے مثال تھی، اور اگر اس زمانے کے حساب سے آپ جائزہ لیجئے تو دنیا اسلام کے اندر جتنی سائنسی ترقی تھی تو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی ترقی کسی اور جگہ پر بھی حاصل ہوگی. اس میں اہم ترین نقطہ کیا تھا، وہ یہ کہ اگر کوئی مادہ پرست یہ سوچ کر تلاش شروع کرتا ہے کہ شاید کچھ نکل آئے، مسلمان سائنسدان یہ سوچ کر تلاش کرتا ہے کہ یقیناً کوئی مصلحت نکلے گی. فرق دیکھ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک مادہ پرست سائنسدان ہے، وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے کہ بھائی اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ممکن ہے کوئی فائدہ نہ نکلے، ممکن ہے بیکار چیز ہو. لیکن الہی سائنسدان، وہ جو دانشمند ہوتا ہے، جو اللہ کی بصیرت سے مزین ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بیکار چیز ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے خدا نے اس میں بھی کچھ رکھا ہوگا، اور میرا کام یہ ہے کہ جو خدا نے اس کے اندر مصلحت رکھی ہے مجھے اس مصلحت کو کشف کرنا ہے. تو اسی وجہ سے مسلمان سائنسدانوں کی ترقی اس وقت بہت بڑے پیمانے پر انجام پائی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب سورہ فرقان کی تفسیر کے دوران ہم اس مرحلے کے اوپر پہنچیں گے. اب یہ ہے کہ کل کے موضوع سے متصل کرتے ہیں اس بات کو. کل جو موضوع ہمارے پاس تھا وہ یہ تھا کہ لوگ انبیاء اکرام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، نبی اکرم کے اوپر بھی اعتراضات کر رہے ہیں. تو قرآن کریم نے نبی اکرم کے اوپر ہونے والے ایک اور اعتراض کو بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کا ایک انداز ہے جس کو ہم کہتے ہیں شخصیت کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا. دہشت گردی صرف قتل نہیں ہے، हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि दहशतगर्दी सिर्फ ये नहीं है कि एक आदमी आए फायरिंग करे कुछ लोगों को मार दे या एक खास आदमी को मार दे, ये तो एक दहशतगर्दी है। लेकिन दहशतगर्दी की और भी अनुभव हो सकती है, वो क्या है? वो ये है कि आप किसी की शख्सियत को माशरे से खत्म कर दें, ये भी आपने दहशतगर्दी करी। किसी ने दहशतगर्दी की है कि शख्सियत को खत्म कर दे, इसको भी हम कहेंगे। और इसी तरीके से मनफी तबलीगात करना, इतना प्रोपेगेंडा मचा देना कि किसी की शख्सियत तामाद हो जाए, ये भी क्या है? लोगों के जहनों के अंदर बुरा तासुर ईजाद कर देना। उस जमाने के जो नबी अकरम के मुखालिफीन थे वो खास मसलहतों की वजह से नबी अकरम को अपनी जिस्मानी दहशतगर्दी का निशाना नहीं बना सकते थे, नबी अकरम को शहीद नहीं कर सकते थे उस मौके पर। क्या वजह थी उसमें? उसमें बुनियादी किरदार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था, तो वो जानते थे कि अगर इनको हाथ भी लगाया तो हजरत अबू तालिब इंतहाई शरीर रद्द अमल दिखाएंगे। जैसे कि एक वाकया मौजूद है कि हजरत रसूल खुदा कुछ देर के लिए तन्हा हो गए नजरों से। हजरत अबू तालिब ने गुमान किया कि उससे एक दिन पहले अबू जहल ने कहा था कि मैं कत्ल कर दूंगा मार दूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने वाकया कर दिया? तो फरमाया अगर ऐसा है तो मैं अभी जाके इनको सजा दूंगा। अब ये सोचिए कि हजरत अबू तालिब पूरे मक्के के सरदार नहीं है, बनी हाशिम के सरदार हैं। हाँ, बनी हाशिम का एहतराम है, लेकिन ये है कि बहरहाल दूसरे कबीलों के भी सरदार हैं, और वहां मक्के में कोई मरकजी हुकूमत नहीं हुआ करती थी। अरब निजाम ही अजीब निजाम था, कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी। मतलब कम से कम शहर की सतह पर कोई गवर्नमेंट हो, लेकिन कोई गवर्नमेंट नहीं है, हर कबीले का सरदार है जो चाहेगा करेगा। तो हजरत अबू तालिब बहरहाल अपने कबीले के सरदार थे, लेकिन मुआज़्ज़ज़ आदमी थे। बहरहाल अपने कबीले को लिया और कहा कि जवानों को लिया और साथ गए और खाने काबा में तशरीफ फरमा हुए, जहां कबीलों के सरदार बैठे हुए थे। हर सरदार के पीछे एक जवान को खड़ा कर दिया और कहा कि जब मैं इशारा करूं तो फौरन तलवारें निकालकर सारे सरदारों की गर्दन उड़ा, कोई बातचीत की जरूरत ही नहीं, ये सब के सब फतले नबी अकरम में शरीक होंगे, लिहाजा इनकी गर्दन उड़ा दिया। अब सोचिए, एक कबीला तन्हा तमाम कबीलों से टक्कर लेने को तैयार हो रहा है, और इस पर भी ये कह रहे हैं कि आया हजरत तालिब में ईमान ताया नहीं था। ये हम इस वाकया नसीब तारीख का जुल्म है। हजरत अबू तालिब तशरीफ फरमा हुए, कहा सबकी गर्दन उड़ा देना, जैसे मैं इशारा करूं सबकी गर्दन उड़ाना। अभी वो लेके चल ही रहे थे जवानों को कि कोई आ गया और उसने बताया नबी अकरम को कि आपके चचा तो इस तरह का खतरनाक इरादा कर रहे हैं। यहां नबी अकरम महफूज मकाम पर थे, जैसे नबी अकरम ने यह सुना फौरन हजरत अबू तालिब के पास तशरीफ लाए और चिंता से निपट गए। बहुत रोए हजरत अबू तालिब और कहा कि इस तरह आप मेरी नजरों से ओझल हो जाते हैं, मेरे दिल पर बहुत तंग गुजरती है और मैं अभी तो ये खतरनाक कदम उठाने वाला था। फिर ये कहा कि अच्छा, मैं ऐसा काम करूंगा कि आइंदा भी कोई इस काम की जरूरत ना करे जिसका खतरा मुझे आज लाहक हुआ। और वो क्या? कहने कि मैं जिस तरह मंसूबा बनाया था उसी पर अमल करूंगा एक फर्ज के साथ। कहा जवानों से कि अभी वैसे ही चलो जैसे हमने मंसूबा बनाया था, जिस तरह मंसूबा बनाया था उसी तरह लेके गए। जवानों को सरदारों के पीछे खड़ा किया, एक मौके पर इशारा किया और इशारा ये किया कि तलवारें गर्दनों तक ला के रोक देना, गर्दने मत उड़ाना, गर्दने नहीं चला, बस ला के रोक देना। जैसी तलवारें निकली और गर्दनों पर रुकी तो उन सरदारों की जाने निकल गई वैसे कि भाई ये क्या मामला हो गया, ये तो हमारी गर्दनें कटने वाली थी। हजरत अबू तालिब ने जब तलवारों को रुकवा दिया तो उसके बाद कहा कि देखो, मेरे हुक्म पर तलवार अभी चल जाती तो तुम्हारी गर्दन भी उड़ जाती। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आइंदा से अगर किसी ने नबी अकरम को टेढ़ी आंख से देखा तो मैं गर्दनें सबकी उड़ा दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये हजरत अबू तालिब का इंतहाई सख्त रद्द अमल था, जिसकी वजह से काफिरों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि नबी अकरम से भी कोई गर्दन पहुंचाने की कोशिश करें। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये कि ये इस तरह तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन नबी की शख्सियत के खिलाफ महाजाराई बहुत ज्यादा शुरू की। एक दफा दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्होंने कहा है कि ऐलान कर दें कि कल बरोज हफ्ता 28 मुहर्रम यहां के बजाय मजलिस भोजानी हॉल में मुनाकिद होगी। कल यहां मजलिस नहीं होगी, भोजानी हॉल के अंदर मजलिस मुनाकिद होगी। यही मजलिस इसी टाइम पर भोजानी हॉल में होगी और 29 और 30 मुहर्रम की मजलिस इसी जगह होगी। ठीक 9 बजे जैसे जो होती है, 9 बजे 9:15 तकरीबन 9:10 तक। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल आप यहां तशरीफ न लाइए, कल आप भोजानी हॉल तशरीफ ले जाइए, वहां पर इंशाल्लाह मजलिस होगी और फिर परसों से दोबारा यहीं पर होगी। तो वो नबी अकरम की शख्सियत को इस तरह तो खत्म नहीं कर सकते थे कि नबी अकरम को नऊज़ुबिल्लाह ताला इस तरह पर गुजर देते हैं या कोई नुकसान पहुंचाते जिसमानी तौर पर, लेकिन यह है कि इसके अलावा जो तबलीगाती हरबे थे वो सारे इस्तेमाल करते थे। अब तबलीगाती हरबे में बहुत सारी बातें हुई कि वो क्या क्या कहते थे, अभी जुमला ही देखिए। वह इधर राउ का ये तखेजू न का इला हुआ अहादी बाह रसूला, जब भी आपको देखते हैं तो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अच्छा ये वो शख्स है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा। ये अंदाज किसका अंदाज होता है? कुरान करीम ने इशारा फरमाया जब भी आपको देखते हैं आपसे कोई बात नहीं करते, कोई सवाल नहीं पूछते, कोई मंतकी गुफ्तगु नहीं करते, बस मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और मजाक उड़ाने में क्या कहते हैं? इसे भेजा है रसूल बनाकर। ये अंदाज किसका है? जिसके पास अकल नहीं है, जिसके पास मंतक नहीं है, उसको पता है अगर अकल के जरिए से आए मंतक के जरिए से आए तो नबी से जीत नहीं पाएगा। जब उसको पता है कि अकल और मंतक से नबी से नहीं जीत पाऊंगा तो वो किस तरह जीतने की कोशिश करता है? मजाक उड़ाकर जीतने की कोशिश करता है। चले ठीक है मैं मजाक उड़ाऊंगा। ये वो काम है जो आज की दुनिया है, इनको पता है अकल और शऊर से मंतक से नहीं जीत पाएंगे इस्लाम के मुकाबले में। तो अब क्या करते हैं? इस्लाम को अपनी मिसाल के तौर पर कॉमेडीज का निशाना बनाते हैं, इस्लाम के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की मूवीज बनाते हैं इस तरह की कि जिसके अंदर इस्लाम के चेहरों को बुरा करके दिखाएं, और या मिसाल के तौर पर कार्टून जैसे बनाएंगे, कहानियां ऐसी बनाएंगे, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा मशीनरी इस्तेमाल होती है। कि जो पूरा हम इंतहा सिनेमा का एक भारत बहुत बड़ी सनअत देखते हैं ये भरपूर तरीके से इस्तेमाल होती है इस्लाम के खिलाफ। और बदकिस्मती से हमारे जवान या हमारे बच्चे या हत्ता हमारे बड़ी उम्र के लोग भी इन्हीं चीजों को ये सोचते हुए कि भारत ये तो हमारी तफरी है देख रहे होते हैं, और ये भी नहीं समझ पाते कि इस तफरी के पीछे उनके क्या मकासद हैं जो हमारी इस नादानी के अंदर पूरे हो रहे हैं। तो वो बाकायदा इसी काम को अंजाम देते हैं। और नबी अकरम की जमाना भी यही था कि कहने लगे कि क्या ये वो शख्स है जिसको रसूल बना के भेजा गया? अब भाई अगर तुम्हें एतराज है तो बताओ एतराज क्या है? लेकिन एतराज कुछ नहीं है, मजाक करना है। अच्छा उसके बाद एक तरफ से ये कहते हैं कि ये तो काबिले इतना नहीं है, इस शख्स को नबी बना के नहीं भेजना चाहिए था और इसके अंदर ऐसी कोई सलाहियत नहीं है, मिसाल के तौर पर ये मजाक उड़ाने में कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी कहते हैं इनकादा लगे बिल्लो ना अन आली हसीना लौला अन सबर ना आ गई वलमू ना ही अजाब मन अदलो सबीला। ये बात भी एतराफ करते हैं कि अगर हम अपने खुदाओं की परस्तिश पर कायम ना रहें तो इस बात का खदशा है कि वो हमें गुमराह कर डाले। एक तरफ से नबी से कह रहे हैं, नबी का मजाक उड़ाते हैं नौजुबिल्ला और कहते हैं कैसा आदमी जिसको नबी बना के भेजा, दूसरी तरफ से ये बात भी कहते हैं कि हम अगर डटे न रहे बुत परस्ती पर तो इस नबी में इतनी सलाहियत है कि ये हमारे सारे निजाम को खत्म कर देगा। ये हमारे जवानों को उस जमाने में इस्तेमाल करते थे कि हमारे जवानों को गुमराह कर देगा, ये हमारे कबीलों के अंदर तफरका डाल देगा, इसके अंदर इतनी सलाहियत है। अब देखिए बात का तजाद यहीं पर है कि भाई एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है, इसको नबी नहीं बनना चाहिए था, और फिर दूसरी तरफ से एतराज कर रहे हैं कि इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये हमारे तमाम निजाम को खत्म कर सकता है। अब लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम सब्र ना करते तो हमारे खुदाओं से हमें दूर कर देता। ये एक और तबलीगाती हरबा है, अपने जुल्म को भी किसी अच्छाई के साथ बयान करना। जुर्म कर रहा है, जुल्म कर रहा है, लेकिन गुफ्तगू ऐसी कर रहा है जैसे बड़ा खूबसूरत काम हो रहा है। मसलन जैसे अमेरिका, आज का अमेरिका क्या करता है? इराक पर हमला किया, जुल्म थी, जुल्म था, बर्बरियत, इंसानियत के खिलाफ, पूरी दुनिया कह रही थी नहीं होना चाहिए, हर किस्म की मुखालिफत दुनिया से हो रही थी। वो अकवाम मुत्तहिदा का जो इन्हीं के बिठाए हुए चमचों की एक जमात थी वो भी उनको कबूल नहीं कर रही थी कि भाई ये होना चाहिए। हमला कर दिया और क्या कहा, हम इंसानी हकूक के दिफा में वहां पहुंचे हैं। जिन एटमी असलाहों को ढूंढने के लिए पहुंचे थे खुद उनका माहिर कह रहा था कि यहां पर नहीं है, हम देख चुके हैं। वो अभी भी कह रहा है, वो हेल्पलिक्स अभी तक कह रहा है कि इन्होंने धोखा दिया हमें, कोई इस्लाम हासिल नहीं है, हम देख चुके हैं, खुद अमरीका को नहीं मिला। और उसी के बहाने जनाब अली इतने अरसे से अब यहां पर हैं। अच्छा अब खूबसूरत मामला यह है कि एक बहाना बनाया कि 20 मिनट की जंग में ये लोग 20 मिनट में इराक ऐसी असलाह इस्तेमाल कर सकता था। सब पता चल गया कि बात जाली थी। अब कोई ये नहीं पूछ रहा कि अब क्यों रुके हुए हो, अब जाओ अभी, भाई जाली बहाने पे आए थे ना, सब गलत था, अब जाओ। लेकिन कुछ भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इसको हम कहते हैं तबलीगाती हरबा। मंतक नहीं है, अकल नहीं है, शऊर नहीं है, लेकिन तबलीगाती हरबा अपना काम कर रहा होता है। परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया? खुदा ने दो तरीके से जवाब दिया। पहला जवाब सख्ती का जवाब, शिद्दत का जवाब, दूसरा तहलील और मंतिक का जवाब, दोनों जवाब होने चाहिए। अगर एक आदमी के दिमाग में अकल की बात नहीं आ रही तो बहरहाल हम ये नहीं कर सकते कि एक आदमी पागल हुआ हुआ है, सबको जहर पिला रहा है और हम कह रहे हैं हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझता है तो समझे वरना नहीं, जहर पिलाता रहे कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर वो जहर पिला रहा है और हमारी बात इसकी समझ में नहीं आ रही तो एक मौके पर पकड़ के इसका हाथ भी रोक लेंगे, फिर ये वो जगह जहां कुदरत का इस्तेमाल होगा कि किसने तुम्हें इजाजत दी कि लोगों को पागल कर रहे हो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो सौ का याद नमूना ये ना यऊन अजाब मन अदल सबीला, अभी तो ये सारी बातें कर लें लेकिन कयामत के दिन जल्द ही जान लेंगे जब अजाब को देखेंगे कि कौन गुमराह है। अभी तो नबी को कह रहे हैं कि कैसा नबी भेज दिया हमारे पास, ये सब अजाब देखेंगे। इतना कहने के बाद जो अजाब का मंजर था अल्लाह ताला ने अब बुनियादी रास्ता बयान फरमाया। असल में मुश्किल क्या है इन लोगों के साथ, और ये जो आयत करीमा है ये बहुत सारे मसाइल की एक बुनियाद फराहम कर रही होती है। अच्छा मैंने अर्ज किया हम जब भी किसी बुराई को देखते हैं कि कुरान करीम में फरमाया ये बुराई है तो हम कहते हैं ये काफिरों की है, इन काफिरों की नहीं है, बुराइयां मुख्तलिफ दर्जात पर मुसलमानों में भी पाई जा सकती है। अब ये तो तहजील की अल्लाह ताला ने अरअईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, ऐ नबी आया आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना दिया है। ये आए करीमा मैं समझता हूं यूं इस तरह समझ में आता है कि आज तक तमाम बुराइयों की बुनियादी तरीन जड़ हमारे सामने बयान कर रही है। क्या है, थोड़ा सा इसको तशरीह करने की जरूरत है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, लफ्ज इलाह का मतलब होता है माबूद, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इबादत की जाए उसको हम इलाह ताबीर कर रहे होते हैं। अब यह है कि इलाह दो तरह से होते हैं, एक तो एक मैं किसी के सामने सर झुकाता हूं तो ये हो गया मेरा माबूद, कि अगर मैंने अल्लाह के सामने सर झुकाया तो अल्लाह मेरा इलाह है, वही मेरा माबूद है। एक दफा होता है कि सर तो मैं किसी और के सामने झुकाता हूं, बात किसी और की मानता हूं, सर मैं अल्लाह के सामने झुकाता हूं बात किसी और की मानता हूं। मिसाल के तौर पर दो बुत हैं, एक आदमी सर झुकाता है इस बुत के सामने और बात मानता है उस बुत की, ठीक है, तो हम कहेंगे ये बुत तो इसका माबूद है लफ्ज में जाहिरी तौर पर, और जिसकी बात मान रहा है असली माबूद वो है। क्यों भाई, जिसकी बात मान रहा है अपनी इबादत तो फिर उसकी कर रहा है। तसव्वुर कीजिए आया इबादत पर यह है, इबादत का मतलब क्या होता है, बंदगी करना, बंदगी का एक जरिया क्या होता है सर झुकाना, जिसके सामने सर झुकाया वो आपका माबूद हुआ। लेकिन अगर कोई किसी की और की बात मानता हो तो जिसकी बात मानता है असल में माबूद वो होगा, क्यों बंदगी तो उसकी कर रहा है। अब एक और ज्यादा निकलता करो ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक गुलाम सोचिए, गुलाम उसका एक आका है, कहता है ये मेरा आका, ठीक है, तो ये बंदा किसका हुआ, कह रहा है कि मैं इसका गुलाम हूं आका मेरा ये है। लेकिन बात किसी और की मानता है, कहता है कि मैं इसका बंदा हूं लेकिन बात किसी और की मानता है। अब बंदा किसका हुआ, ये लफ्ज में तो इसी का हुआ लेकिन अमल में किसका हुआ, जिसकी ये बात मानता है असल में बंदा उसका है। क्यों, मौला तो बहुत है जिसकी बात सुनी जाती, माबूद के साथ भी ऐसे ही कि एक वो माबूद है जिसके सामने सर झुकाता है लेकिन बात किसी और की मानता है, तो जिसकी बात मानता है असली माबूद वो कहलाएगा। अब कुरान क्या कह रहा है, कुरान करीम ने इरशाद फरमाया अरअईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, आया उस शख्स को देखा जिसने अपनी हवा और हविस को अपना माबूद बना लिया है। अब सर किसी के निजाम में झुकाता रहे, बात किसकी सुनता है, अपनी हवा और हविस की सुनता है, बस इसका असली माबूद कौन सा हुआ, इसका असली माबूद वो नहीं जिसके सामने सर झुका रहा है, असली माबूद इसका खुद हवा और हविस है। क्यों, उसकी सुनता है, अल्लाह की सुनता ही नहीं। अब इंसानों में से कुरान करीम इरशाद फरमाया इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे हैं जो किसी की नहीं मानते, इबादत किसी की भी नहीं करते, ना खुदा की करते हैं ना पत्थरों की करते हैं, किसकी करते हैं, अपनी हवा और हविस की इबादत करते हैं। क्यों, इनकी की सुनते हैं और किसकी सुनते हैं, पर अल्लाह का हुक्म इनके सामने रखा जाता है उसकी नहीं सुनते, रसूल का हुक्म रखा जाता है उसकी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, किसकी सुनते हैं, अपनी हवा और हविस की सुनते हैं। अगर इनका दिल चाहता है खुदा का हुक्म तोड़ देते हैं, अगर इनका दिल किसी और बात पे चाह रहा होता है काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। बस इनको खुदा का कोई बात नहीं है। ये तहलील बुनियादी तहलील है। और अब इंसान अपने अंदर तलाश करे, काफिरों के अंदर तो यकीन दे क्या, लेकिन अपने अंदर भी मुसलमान देखे कि मेरा महबूद असल में कौन है, असल में मेरा महबूद कौन है। और एक और बात भी कह दूं, वो ये कि इस मामले में शिर्क भी हो सकता है। शिर्क क्या है? किसी को शरीक करार देना। शिर्क भी हो सकता है, वो क्या, कुछ मामलों में मेरा महबूद खुदा है और कुछ मामलों में मेरा महबूद कोई और है, ये भी हो सकता है। वो कैसे, नमाज पढ़ने में मेरा महबूद अल्लाह है उसके सामने, उसके लिए, उसके कहने पर, लेकिन कारोबार में मैं खुदा ना मानूं। क्यों? अल्लाह की मानना, अपने आप की मानना। तो ये भी हो सकता है कि क्या किया, अब एक और टर्म सुनिएगा, नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला को पार्ट टाइमर माबूद बना लिया है। वो क्या, पार्ट टाइमर माबूद कैसे हो गया? वो ये कि कुछ वक्त के लिए खुदा की इबादत, बाकी वक्त के लिए अपना धंधा। ये वो खराबी है जो आज के मुसलमान में भी पाई जा रही है। अरे ये खराबी क्यों आती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस वक्त खुदा की इबादत करता है उस वक्त भी सोच समझ के नहीं करता। क्यों? अगर उस वक्त खुदा की इबादत सोच समझ के कर रहा होता तो बाकी वक्त में शिर्क क्यों करता है? बस तहलील को लिए आगे बढ़ते चले जाइए तो आप देखेंगे कि इसको खुदा पर यकीन है ही नहीं। अपनी मानता यहां पर अगर ऐसा मलिक दखदा इलाहा हु हवा, अब इससे एक और दर्ज भी निकलना चाहिए, वो ये कि अगर मैं अपना तजिया करना चाहूं तो मैं अपनी जिंदगी का जायजा लूं और अपनी जिंदगी में ढूंढने की कोशिश करूं कितनी देर खुदा मेरा महबूद रहता है और कितनी देर कोई और मेरा महबूद बन जाता है। अच्छा, फिर मेरा महबूद भी चलता रहता है, वो किस तरीके से? मैंने शायद आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि भाई वो जो कूफा वालों ने इमाम अली मकाम का साथ नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया? कहा भाई हमारे कबीले का सरदार कुछ और कह रहा है। इसका महबूद उस वक्त कौन बन गया? कबीले का सरदार। फिर एक और मौका आया कि भाई अब क्यों साथ नहीं ले रहे? कहा इस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा। अब महबूद कौन बन गया? मेरा दिल। हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, नहीं होना चाहिए लेकिन हो सकता है। वो क्या, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? क्या खुदा ने मांगा है? नहीं, खुदा ने तो नहीं मांगा। नहीं करूंगा तो माशरे में मेरी नाक कट जाएगी। अब ये महबूद कौन हो गया इसका? माशरा। ये काम आप क्यों कर रहे हैं? ये काम इसलिए कर रहा हूं कि अगर नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। फिर मैं बच्चों को कहता हूं कि नहीं देखें, वो फिर भी देखते हैं। अब बहुत ज्यादा रोकूंगा तो फिर मुझे नफरत करने लगेंगे मुझसे। ज्यादा मैं आप नहीं बोलता हूं, कहता हूं आंटी के लिए खुद। अब महबूद कौन है? बच्चे। बच्चे महबूद हो, बच्चे सरदार। अब किसी का महबूद उसकी रोजा भी हो सकती है, किसी का महबूद उसका खानदान भी हो सकता है, और महबूद घूमता भी रहता है। कामिल मुसलमान कौन होगा? जिसका सुबह से लेकर शाम तक इस जिंदगी से उस जिंदगी तक बस खुदा ही महबूद रहे। वो महबूद से शुरू करे अल्लाह से सुबह को और रात को सोते दम तक अल्लाह ही को अपना महबूद रखे। इस मामले में जिक्र की अहमियत समझ में आती है। जिक्र क्या है? आप कोई तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम कोई पढ़ते हैं, इसकी अहमियत समझ में आती है। अगर अकल और शऊर के साथ हो कि अगर जिक्र करता रहे तो शायद किसी और माबूद की दिखालत के वक्त उसको खुदा का माबूद होना याद आ जाए, और कोई और अगर बीच में आने की कोशिश करे तो वो कहे भाई मेरा माबूद है असली खुदा है, किसी और माबूद के लिए यहां कोई गुंजाइश नहीं है, ना खुदा से सुनूंगा। अल्लाह सबको मकान नसीब फरमाए। जरूर भेजेगा मोहम्मद वाले अच्छा, अगर कोई हवा व हवित को माबूद बना ले तो आगे होगा क्या? जंगल का कानून इसी को कहेंगे सर। क्यों? हर आदमी इस बात पे चलेगा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो, बाकियों का क्या हो, मुझे क्या बाकियों से? बाकी मरते मरे, मैंने कोई ठेका लेकर रखा है सबका। अब क्या होगा? मैं उस वक्त जब मेरे पास ताकत होगी अपनी ख्वाहिश पे अमल कराऊंगा। किसी और में अगर ताकत बढ़ गई वो अपनी ख्वाहिश पे अमल करवाएगा। पर जिसको हम कहते हैं जंगल का कानून, कि जिसके पास ताकत ज्यादा हुई वो अपनी बात के ऊपर अमल करवाएगा। और यही वो है जो दुनिया के अंदर हो रहा है। अब मुश्किल यहां पर क्या होती है एक आदमी कहीं पर तो बहुत बड़ा चैंपियन बना हुआ होता है और अगर उससे ऊपर वाला उसके सामने आ गया तो बस यहीं से लगना शुरू हो जाएगा, खत्म हो गया मामला, जितना गुबार था सब निकल गया। और वो जो इसके ऊपर वाला है या अगर अपने ऊपर वाले के सामने पहुंच जाए तो ये उसके सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा रह जाएगा। ये सब हो रहा है दुनिया के अंदर, ताकत का निजाम चलता है अगर खुदा के ऊपर कोई ना कोई इनकार करे। अब कुरान करीम में क्या करना है, अगर ये हो अरे ऐसे मैंने तकदा इलाह हुआ, अरे उस सबको देखा जो अपनी हवा हवा इसको अपना माबूद बनाता है, आफा अंता तकुनु अलैहि वकीला, ए नबी क्या आप इसके सरपरस्त बनेंगे? क्या मतलब कहने का, यानी ए नबी आप कुछ भी कर लीजिए ये राह रात पर नहीं आएगा। बस एक बात समझ में आ गई, अगर किसी को अल्लाह के रास्ते पर चलना है तो सबसे पहले अंदर के दियों को बाहर निकालना होगा। पहला काम वो ये करे कि अपने अंदर जो एक दियो बैठा हुआ है, जो फारसी में बड़ा एक मशहूर शेर है, कहते हैं दियो चूं बीरून दवर, मिसरा है दियो चूं बीरून दवर फरिश्ते दरवाजा, यानी अगर ये दियो निकलेगा तब फरिश्ता अंदर आएगा। तब अगर कोई अपने हवा व हवस का दियो निकाल ले तब रहमानियत का साया पड़ेगा, उसकी नूरानियत बढ़ेगी। लेकिन अगर ये दियो अंदर बैठा रहा तो आप लाख अकायद पढ़ते रहिए, लाख आप मजालिस सुनते रहिए, लाख आप कुछ करते रहिए, इसको निकाले तो मदद मिलेगी, और अगर इसको नहीं निकाल पाए फिर नहीं हो पाएगा। यानी अगर किसी ने ये कहा है ना कि मैं अपनी भी चला लूं और दीन भी बचा लूं, नहीं ये दो साथ नहीं चलेंगे, या अल्लाह की चला लो या अपनी चला लो, अपनी रजायत को उधर ले जाओ कि खुदा की वो ही बन जाए। कि मसलन मैं अब वो चाहता ही नहीं जो खुदा नहीं चाहता, ये एक अच्छा मजा है कि आपकी रजायत बन ही वो गई है जो अल्लाह की रजायत, ये दोनों चीजों को हल कर सकती है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर तारुज रहेगा हमेशा, मेरी ख्वाहिश में अल्लाह की ख्वाहिश में मुकाबला रहेगा, और अगर मैंने अपनी ख्वाहिश से चलना है तो फिर खुदा का मामला बहुत बुरी तरीके से हल हो पाएगा। वो सौ का आलम ये हो गया। अब आस्था तक उन्होंने अलैहि वकीला, ए नबी क्या आप इसके ऊपर सरपरस्त बनेंगे? उसके बाद अल्लाह ताला नबी से इरशाद फरमाया, हम तासबो अन अक्सर हम ये सुनाऊना हो या फिर एक और बात, ए नबी क्या आप ये समझ रहे हैं कि इनमें से अक्सर सुनते हैं या समझते हैं? मामला क्या है, नबी अकरम तो अपना हुक्म लेकर आए हैं, वो अपनी तबलीग के काम को अंजाम देंगे, जब अपने तबलीग के काम को अंजाम देंगे तो उनकी ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश यह है कि हर कोई सुने हर कोई समझे। अच्छा सुनने और समझने में फर्क क्या होता है? वो ये हो कि एक दफा इंसान के पास खुद इतनी अकल होती है कि वो चीजों पर गौर करता है तो हकीकत तक पहुंच जाता है, इसको हम कहते हैं सोचना। एक दफा सोचना और समझना, एक दफा खुद तो इतनी सलाहियत नहीं है अकल के अंदर कि हकीकत तक पहुंच जाए तो ये कहता है जो दूसरों में सलाहियत है उससे मुझे फायदा उठाना चाहिए, तो ये सुनने वाला बन जाता है। तो या इंसान समझने वाला बन जाए कि अपनी अकल से खुद ही समझ ले, या इंसान कम से कम सुनने वाला बने कि अगर अपनी अकल से हकीकत नहीं भी समझ रहा तो दूसरे की सुन ले और उसको सुनकर हकीकत को समझने की कोशिश करे। अब अगर न सोचने वाला समझता है न सुनने वाला समझता है तो फिर क्या बनेगा? ये फिर ये गुमराह होता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी क्या आपने ये समझा है कि अक्सर सुनते हैं या समझते हैं? नहीं, अक्सर ऐसे नहीं होते। अक्सर क्यों नहीं होते? ऐसे हवा व हवस का शिकार हो जाते। सादा तरीन काम यह है ना, जो दिल में आए करो। और मैं तो बाजू बात मुझे अफसोस होता है अपने जवानों के ऊपर, बेचारों के ऊपर, कि हर तरफ से चार्ज बना रहे हैं जो दिल में आए करो, ये फिक्र ही इस्लाम के खिलाफ है। ये तो कुरान करीम में क्या करना रहा है कि ये तो अपने आप को माबूद बना लेना है, जो दिल में आए करो, नहीं जो दिल में आए वो नहीं करो, जो खुदा चाह रहा है वो करो। तुम्हारा दिल तो बहुत गलत चीजें चाहने लगेगा फिर, और जो तुम्हारा दिल चाहेगा उसमें दूसरे का कोई हक नहीं बचेगा, फिर दूसरे के हुकूम को बहाल कर दोगे। तो ये फिक्र ही गलत है कि मजे मौज मस्ती ये सब गलत है। हाँ जायज तकरीर की जगह है, लेकिन अल्लाह की इताअत के साथ। कभी भी अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें दीन लेके आया हूं ताकि तुम मजे उड़ाओ मौज करो मस्तियां करो। नहीं सर, नहीं, इस्लाम एक संजीदा मजहब है, इस्लाम को इंसान को जिम्मेदार समझता है, उसने हैवान की तरह नहीं समझा है। और अगर कोई नहीं सुने नहीं समझे तो क्या होगा? इन हम इल्ला कल अनआम बल हम अदल सलीला, ये कुछ नहीं है मगर जानवरों से ज्यादा पाप, जानवरों से ज्यादा गुमराह हैं ये लोग। कौन लोग? जो न समझते हैं न सुनते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं जो हमारा दिल में आया वो करेंगे। हाँ अगर कोई इस कानून को इख्तियार कर ले कि जो मेरे दिल में आया मैं वो करूंगा, फिर वो जानवरों से पाप हो जाएगा। क्यों जानवरों के पास हो जाएगा? और क्या कोई निशानी है हमारे पास? मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले वहां। इंसाफ यह है कि गर्मी लग रही है, ठीक है, यही इंसाफ गर्मी लग रही है। सवाल यह है, क्या सख्ती के बगैर अच्छी चीज मिलती है? ये नहीं होता। और मैं आपको अर्ज करूं कि जब हम तालिबे थे, हमारे अजान से कहते थे, मन फलाबल ओला सहारा लय, जिसको बुलंदी चाहिए है रात को तो जागना पड़ेगा। मन फलाबल ओला सहारा लय आदि कहते थे मां दिल मोहित बल महाली, पहला जुमले को मैं कबूल नहीं करता जा रहा, मैंने कह रहा, कहते थे जो शादी जुदा हो गया वो कहां बुलंदी पर पहुंचेगा? मन बराबर ओला सहारा लया है, तो मेरा कर्म नहीं ऐसा नहीं, जो शादी जुदा वो भी बुलंदी पर पहुंच सकता है। लेकिन एक दूसरे मिसरा है, मन बराबर ओला सहारा लया जी, जो बुलंदी चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर बुलंदी चाहता है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी क्या देनी पड़ेगी? जितनी बुलंदी चाहते हो उसके हिसाब से कुर्बानी देनी पड़ेगी, जितनी बुलंदी चाहते हो। और दुनिया में भी ऐसा ही है, दुनिया में भी ऐसा ही है, कमाने वालों को देखा है। यकीन करो जो मैंने आपके सामने जुमला अर्ज किया था ना, बचा के रखा था दुनिया आपने नहीं, कि मैंने अर्ज किया था किस तरीके से कमाते हैं जानवरों की तरफ जुट जाते हैं, जैसे कुल्लू का बैल होता है, बस कहते हैं यूं घूमो, अब बेचारा घूम रहा है, कुछ भी नहीं सोच पा रहा है मैं घूम क्यों रहा हूं। तो क्या करते हैं, बिठा देते हैं कमाने की चीज पर, और उसके बाद कहते हैं अब दुनिया भूल जाओ, सब भूल जाओ, बस कमाओ। तो जिंदगी का तमाम मतलब नजर क्या बन जाता है? बस बढ़ाओ कमाओ, जानवरों की तरह कमाने के ऊपर लग जाता है। क्या होता है? अच्छा, ये आदमी क्या मशक्कत नहीं झेल रहा होता? ये मशक्कत झेल रहा होता है। मैं एक दफा, मुझे याद है ईद की रात थी, मेरे बचपने की बात, और अल्लाह ने एक बात हमेशा ध्यान में रखी है, आपकी अपनी मर्जी है कि वाकयात से कोई दर्द लें या ना लें, वाकयात तो सामने आएंगे, ये तो आपकी जिंदगी में आते रहे, सिर्फ ये दर्द लेने की कोशिश की जगह जगह। तो मुझे याद ईद की रात एक दफा एक मार्केट में गए, तो वहां पर बहुत शरीर गर्मी है, हल्की शरीर गर्मी, एक अजीब आदमी, तो वहां दुकानदार से बात, ये बहुत महंगा बेच रहा था। उसने कहा भाई इतना क्यों महंगा बेच रहे हो? तो उसने सलवार का पांचा उठाकर अपना टांग दिखाई, तो वो एक खोखे में बैठा हुआ था, लकड़ी का खोखा था जिसके अंदर वो बैठा हुआ था, और हम तो खोखे के बाहर थे, तो हम गर्मी से मर रहे थे। कहना देखो आप बाहर हो ना, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, अब आप मर रहे हो, अंदर पूछो, मैं जो अंदर नीचे बैठा रहता हूं कई कई घंटे, मेरा क्या हाल है? फिर उसने पांचा उठा के पांव दिखाया, तो जख्म बने हुए थे गर्मी के दानों से, पूरे पांव पर जख्म लगे हुए थे। कहने लगा जब मैंने इतनी सख्ती बर्दाश्त की तो कुछ पैसा कमा के जाऊंगा ना। तो मैं सोचने लगा कि यार, अब सोचता हूं कि ये पैसा कमाने के लिए इतनी सख्ती कर झेल रहा है, हमने कभी खुदा की खातिर इतनी सख्ती नहीं झेली। बहुत सारी मिसालें हैं कि मसलन इन मिसाल में कहते हैं, एक आदमी कहीं ज्यारत के लिए किसी जगह पर गया, तो नमाज फजर से पहले रोजे पर पहुंच गया, नमाज फजर से पहले। अब वो जो रोजे पर पहुंचा तो बाहर भिखारी बैठे हुए थे, तो उसने भिखारी से कहा कि बड़ी जल्दी आ गए, तो अभी तो फजर की नमाज भी नहीं हुई, अभी जा गए। क्या मैं ना, मैं हर रोज फजर से पहले आता हूं। उसने कहा मुझ पर लाना दो, ये भीख मांगने के लिए फजर से पहले आता है, मैं अल्लाह की रहमत मांगने फजर से पहले नहीं आता। ठीक है, कमाने वाला इस तरह कमाता है, और हम ये समझ रहे हैं कि मानवीयत में कुछ ना करें बस गिनती चली जाए, नहीं होता है, सख्ती झेलनी पड़ती। दूध भेजेगा मोहम्मद वाले। अब यह है कि ये इंसान क्यों जानवरों से ज्यादा पस्त हो जाता है? जानवरों को तो अल्लाह ने सोचने की ताकत नहीं दी थी, इसको तो सोचने की सलाहियत दी थी अल्लाह ने। जानवर को तो अल्लाह ने इरादा और इख्तियार नहीं दिया था, इसको तो इरादा और इख्तियार दिया था। अच्छा, जानवर क्या करता है? जानवर भी यही करता है कि जो दिन में आती है कर गुजरता, जानवर भी यही करता है। लेकिन एक बात मैं आपको अजीब अर्थ करूं, जानवर जानबूझकर बदल भी नहीं करता, इंसान करता है। जानवर को कभी आपने देखा है? अब आप कहेंगे कि आज मैं बहुत ज्यादा इधर उधर जा रहा हूं। मैंने एक आधा पर बिल्ली को घास खाते देखा है। जब बिल्ली क्यों घास खाती है? जब उसका हाजमा खराब होता है तो वो घास खाती है, ताकि उसका हाजमा सही हो जाए। सही है, तो वो उस मौके पर अपनी महबूब तरीन गजा यानी गोश्त को तर कर देती है और घास खा लेती है। हम इंसान इतना भी दर्द नहीं ले सकते कि अगर हमें अल्लाह अजीज है तो उसकी खातिर अपनी चंद महबूब चीजों से गुजर जाए। बहुत कुछ है।